मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 9 जुलाई 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि एकेडमी फॉर एक्सीलेंस का जो नेक्स्ट बैच होने जा रहा है वो अक्टूबर में होने जा रहा है, जो 15 दिनों का है, लेकिन उसकी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब जो उसके बाद जो बैच होना है वो 28 फरवरी 2016 से होना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस बैच के लिए कल 5 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 5 नौजवान साथियों के नाम हैं संतोष कुमार, जो आरा बिहार से हैं, और आरा बिहार से ही हैं इम्तियाज हुसैन। तीसरे साथी हैं श्रवण सिंह राणा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। विनय मौर्य, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, और गोविंद कुशवाहा, आप देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। संतोष, इम्तियाज, श्रवण, विनय और गोविंद, आप सभी पांचों नौजवान साथियों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सब आप जानते हैं कि अभी मोटिवेशन वाले सेक्शन में अभी जो रिजल्ट आए हैं उन सभी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उन जो भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उनको बेस बनाकर उसी को लेकर के आज मैं और भी आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो सिविल सर्विस के बारे में आपके दिमाग में जो भी धारणाएँ बनी हुई हैं उनको क्लियर कर सके, यदि वो सही है तो उन्हें मजबूत बना सके, ताकि आप बिल्कुल निसंदेह द्वंद मुक्त होकर के अपनी उन धारणाओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, या यदि कुछ धुंधलापन है तो वो क्लियर हो सके और अगर जरूरत है तो वो खत्म हो सके। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक विशेष सूचना देना चाहूंगा और यह सूचना मुझे मिली है विकास कुमार सिन्हा से, जो अभी कस्टम सर्विस में हैं और मुंबई में पोस्टेड हैं और फर्स्ट बैच के यहां के स्टूडेंट भी रहे हैं। मुझे ये जानकर, ये मेल पढ़कर के बेहद खुशी हुई कि जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं ये 12 जुलाई को, अभी कुछ ही दिनों के बाद 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच मुखर्जी नगर, दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इनको उम्मीद है कि लगभग 500 स्टूडेंट यहां इकट्ठे होंगे और यहां वे स्टूडेंट होंगे जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और डेफिनेटली वे स्टूडेंट तो होंगे ही जो यहां एकेडमी में फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। और विकास सिन्हा ने लिखा है कि मैं उनके बिहाफ पर उन सभी स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित करूं जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम वो करने जा रहे हैं विकास सिन्हा अपनी टीम के साथ, उसका जो मेन पर्पज है फ्रेंड्स वो है कि अभी जो प्री का एग्जाम होना है अगस्त में, उसके बारे में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर सकें, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें और अभी तक तैयारी करने के दौरान उनके जो अनुभव रहे हैं उसको भी वो साझा कर सकें। उन्होंने लिखा है कि इसके बारे में उनके अपने साथियों से बहुत बातचीत हो रही है और यहाँ जो जहाँ स्टूडेंट जहाँ से आने वाले हैं उनमें कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, लुधियाना आदि स्थानों से स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ जो दोस्तों प्रोग्राम होता है उसमें पूरे देश से लोग आते हैं, शायद ही कुछ स्टेट्स छूटते हों, और वहाँ भी जिस तरह से विकास सिन्हा ने लिखा है कि लगभग सभी काफ़ी स्टेट्स से वहाँ स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। विकास, तुम्हारी इस कोशिश के लिए और तुम में से जिन लोगों ने भी मिलकर ये प्लान किया है उन सबको मैं सही मायने में हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और निश्चित रूप से प्रोग्राम की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही। और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई, जो मेरी जानकारी में नहीं थी, कि फर्स्ट बैच ने अपना एक अलग से फेसबुक पेज बनाया है, AFEIS ग्रुप के नाम से फेसबुक बनाया है और उस फेसबुक पर 1500 एंट्रीज है। 1500 ऐसे स्टूडेंट्स का वो ग्रुप है जो यंग है और जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ये एएफई के नाम पर विकास जो आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं आप लोगों के की जो कोशिश है उसकी बहुत बहुत मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। और मुझे सच पूछो तो इसको पढ़ने के बाद लगा कि ये जो 15 दिन की यहां क्लासेस होती हैं वो केवल आपको सिविल सर्विस में ही सफल होने लायक नहीं बनाती, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपको पूरी लाइफ को आपके एक्सपेंड करती हैं, ताकि आप सिविल सर्विस में आने के बाद भी वहां अपनी पहचान का एक अलग से कोई झंडा गाड़ सके। तो मित्रों, ये प्रोग्राम है और विकास ने ये भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट इसमें आना चाहें तो वो स्टूडेंट फेसबुक पर इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि उसके बारे में जो जरूरत होगी वो व्यवस्थाएं की जा सकें। तो मित्रों, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सच पूछिए तो ये भी है कि वहां जो प्रॉब्लम्स जो भी डिस्कस होंगी या जो प्रॉब्लम्स सामने उभर कर आएंगी, मैंने विकास से कहा है कि वो प्रॉब्लम्स वो मेरे पास भेजेंगे और उन प्रॉब्लम्स के रिप्लाई मैं फिर स्पेशल ऑडियो के जरिए या जैसा भी संभव होगा वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से मित्रों, ये एक नए तरह की शुरुआत है और जब नए तरह की शुरुआत होती है तो बहुत से लोग अनेक तरह के संदेह बताते हैं, प्रश्न भी खड़े करते हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है और आप सब भी जानते हैं कि दुनिया यदि आगे बढ़ी है और आज तक जहां तक पहुंच चुकी है, पहुंची है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि बहुत से लोगों ने बहुत सी आशंकाओं के बावजूद नई शुरुआत की है। तो विकास, तुम्हारी टीम के द्वारा ये जो नई शुरुआत की गई है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी पूरी की पूरी एकेडमी इसका बहुत स्वागत करती है। और यदि तुम्हें ऐसा महसूस होता है, तुम्हारी टीम के सदस्यों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें एकेडमी की कोई मदद चाहिए, तो बिल्कुल बताओ। हालांकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि उसी तुम लोग अपने सम्मेलन में इस तरह के भी निर्णय लेने वाले हो कि अगला कार्यक्रम कहाँ रखना है, कब रखना है। तो डेफिनेटली ये शुरुआत है, इसे अंजाम दो और इसके अनुभवों के आधार पर फिर लगातार इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखो। तुम्हारे ग्रुप ने, फर्स्ट बैच ने इसकी शुरुआत की है, अपना पहला और नया बैच होने का प्रमाण पेश किया है। तुम्हारे पीछे सेकेंड बैच है, थर्ड बैच आने वाला है और ईश्वर चाहेगा तो लगातार इस तरह से बैचेस आते रहेंगे। तो मित्रों, मैं विकास सिन्हा और अपने एएफई के फर्स्ट बैच के बिहाफ पर सभी उन विद्यार्थियों का, उन स्टूडेंट्स का को आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम के लिए जो इसमें जरा सी भी रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, अब इस आमंत्रण के बाद और एक बार फिर से विकास और उसकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देने के बाद, अब मैं आता हूं अपने मोटिवेशन वाले सेक्शन पर। मित्रों, मेरे एक स्टूडेंट ने, जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने मुझे ये सूचना दी है कि जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ईरा सिंगल का आप सब इंटरव्यू देखें जो एनडीटीवी पर था, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और ये सूचना मुझे दी है, सेकेंड बैच की स्टूडेंट है मेरी प्रेरणा सात्विका इलाहाबाद से उन्होंने। तो आप सब डेफिनेटली इस इंटरव्यू को देखें और आप पाएंगे कि इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएंगी। जैसे फ्रेंड्स, कि अभी जो मैंने विकास सिन्हा और उनकी टीम के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, इसको आप टाइम वेस्ट कह सकते हैं, बेकार की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मित्रों, आपको नहीं मालूम कि इसको करने में कितनी मेहनत लगती है। जो टीम इसको अंजाम देगी, और डेफिनेटली विकास तो मुंबई में है, का प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली के जो स्टूडेंट होंगे उन पर ज्यादा दबाव होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जो आप अपने आप को डेवलप करेंगे, वो अद्भुत होगा। वो आप 20-20 घंटे 20 महीने तक पढ़ाई करके नहीं कर सकते, और 20-20 या 200 किताब पढ़कर भी नहीं कर सकते। और मित्रों, सिविल सर्विस को ऐसे ही व्यक्तित्वों की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि ईरा सिंगल, जिनके ऊपर हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, यदि आप शारीरिक रूप से डिसीजन लेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं इनसे बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स दूसरे हैं, लेकिन जब आप मानसिक और आंतरिक शक्ति और क्लैरिटी ऑफ माइंड और मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब के आधार पर जब आप डिसीजन लेंगे, जो कि एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि नो, ईरा सिंगल इज सुपर, वो फर्स्ट है। तो ये चीजें आएंगी कहां से? घर बैठे आएंगी, पढ़ने से आएंगी, नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल की बात होती है, व्यावहारिकता की बात होती है। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के हैं, उनके लिए एएफई क्लब का की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सच में फर्स्ट बैच ने भी जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो उसी क्लब के तहत ही वो इसको अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो भी अपने अपने लेवल पर, छोटा सा ही सही, डजेंट मैटर, आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, अपने अपने लेवल पर करें। और मुझे बेहद खुशी होगी जब आप सब इसके बारे में मुझे सूचना भी देंगे। और जो स्टूडेंट नहीं रहे हैं क्लास की, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि प्लीज़ वो देखें कि अपने आसपास में कैसे सोसाइटी के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर वो काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी एक्सपेंड हो और अपना दिमाग भी एक्सपेंड हो। मित्रों, जो दिमाग के एक्सपेंड करने की बात मैं बार बार करता हूं और जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात मैं बार बार करता हूं, उसके पीछे कारण है। कारण यह है फ्रेंड्स कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि नॉलेज अगर उनके पास बहुत सा आ गया तो उनको सिविल सर्वेंट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण है जो मेरे पास मेल आया है, और ये मेल लिखा है सुनील कुमार यादव ने, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। सेकेंड बैच का मतलब है कि अभी मार्च में ये बैच खत्म हुआ था। हिंदी में है, मैं उनके मेल को ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस पढ़कर सुनाने के पीछे एक रीजन है फ्रेंड्स। वो रीजन ये है कि जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि थोड़ा पढ़िए, लेकिन जिस थोड़े से को आपने पढ़ा है उसको पूरा पढ़िए, उसको कंप्लीट पढ़िए। मैं इस वाक्य को दोहरा रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन ये जो थोड़ा सा आपने पढ़ा है उसको पूरा पढ़िए, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। हां, ये जरूर है कि ये जो थोड़ा सा जो शब्द है, जो थोड़े सा का जो चयन हुआ है, वो थोड़ा सा क्या हो, उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे कि उस थोड़े से में ही सब कुछ आ जाए, राइट फ्रेंड? तो उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 15 दिन की क्लास होती है और फिर ये जो ऑडियो गाइडेंस भी है, आपकी मदद कर सकता है मित्रों। और उसी के प्रमाण के तौर पर मैं सुनील कुमार यादव का ये मेल आप लोगों को अक्षरशः पढ़कर सुना रहा हूं। मैं सुनील कुमार यादव, सेकेंड बैच रजिस्ट्रेशन नंबर 1220 जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूं। प्रणाम सर, मैंने बीते 28 जुलाई से 4 अगस्त तक यूपी पीएससी मेंस परीक्षा दी। पूरी परीक्षा के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि स्पेशल ऑडियो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए। निबंध और ऑप्शनल दोनों में कई प्रश्न तो सीधे सीधे स्पेशल ऑडियो से ही पूछे गए। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रक्षा अध्ययन था और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स पेपर में 4 प्रश्न हूबहु स्पेशल ऑडियो के टॉपिक से ही थे, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र के उभरते आर्थिक युद्ध नीतिक परिदृश्य में व्यावहारिक सफलता के लिए भारत की ग्राह्यताओं हेतु यथार्थ परक सुझाव दीजिए। इसी तरह भारत चीन संबंधों पर एक प्रश्न था, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर था, भारत अमेरिका पर था और एक भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर प्रश्न पूछे गए थे। निबंध में भी किसानों के सूखे की समस्या पर एक प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को हल करने में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि स्पेशल ऑडियो की वजह से पॉइंट निकालने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी और ये सभी प्रश्न और उनका भाव आसानी से समझ में आ गए। कुल मिलाकर ये ऑडियो गाइडेंस बहुत उपयोगी रहे और अपने इस परीक्षा के अनुभव के आधार पर आपके माध्यम से अपने एफईआईएस परिवार के सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग स्पेशल ऑडियो को बार बार सुने, क्योंकि स्पेशल ऑडियो आपकी परीक्षा के समय आपके उत्तर लेखन में बहुत मददगार साबित होंगे। मित्रों, ये सुनील कुमार का मेल था जो मैंने बिना एक भी शब्द बदले हुए आपके सामने ज्यों का त्यों प्रोड्यूस किया है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि इसको प्रोड्यूस करने के पीछे मेरा इसके सिवाय कोई दूसरा मकसद नहीं है कि आपको मेरी इस बात पर थोड़ा सा यकीन हो सके कि कैसे थोड़ी सी चीजों को ज्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ने में ही आपकी सफलता का रहस्य निहित है। और मित्रों, ईरा सिंगल वगैरह ने ये करके दिखाया है। दूसरे बैच स्टूडेंट्स की अभी डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है जो सफल हुई हैं, लेकिन मित्रों, जिनकी भी जानकारी में है उसके आधार पर हमको ये निर्णय लेने में, इन चीजों को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, पहली बात ये थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं स्थान के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। थोड़ा सा इशारा मैंने 2-3 दिन पहले किया था, स्थान और सब्जेक्ट। नो डाउट कि इस बार अगर 5 स्टूडेंट्स में देखें तो आप देखते हैं कि शुरू के 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट जो भी हैं दिल्ली के हैं, ज्यादातर स्टूडेंट दिल्ली के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में यह धारणा आएगी कि क्या दिल्ली वालों के लिए कोई सीट रिजर्व है, या दिल्ली वाले ही इसके योग्य हैं, या वो कैसे कमाल होता है, ये क्यों ऐसा होता है। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर को ही ले लीजिए, हर का एक केंद्र होता है। अभी नो डाउट दिल्ली सिविल सर्विस का बहुत बड़ा केंद्र है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इससे पहले अगर आप पुराने लोगों से पूछें, जो सेक्रेटरी भी अब तो खैर दिल्ली केंद्र बनने के बाद वाले बन चुके हैं, पहले इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब है आईएएस, जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जिसको हम कहते हैं, जो दिल्ली में ही है, ये दो बहुत बड़े सेंटर हैं। और यहां ज्यादातर स्टूडेंट जो आते हैं वो इसी पर्पज से ही आते हैं कि उन्हें वहां अपनी पढ़ाई करके और सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। मित्रों, अभी सीबीएसई के रिजल्ट आए, मेरे पास कितने फोन आए, जो भी परिचित हैं जिनको लगता है मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर सकता हूं, उनका कहना था कि हमें अपने मुझे अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को आईएएस कराना, वो आईएएस करना चाह रही है, मैं कहां उसका एडमिशन कराऊं। ये कॉलेज की बात हो रही, किस कॉलेज में एडमिशन कराऊं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में मेरी उनको सलाह होती कि यदि परसेंटेज अच्छे हैं और अगर दिल्ली में एडमिशन हो सकता हो तो आप दिल्ली में एडमिशन करा दीजिए। तो मित्रों, आपको जो जड़ है दिल्ली की सफलता की, वो वहां से देखनी होगी। अब ये स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है, जिसके 95% मार्क्स आए हैं, अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और शुरू से उसने उद्देश्य बना लिया है कि उसको सिविल सर्विस करना है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके आईएएस के सिलेबस से मैच कर रहा है, तो जाने अनजाने में वो पढ़ कर तो बीए ग्रेजुएशन रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, लेकिन वो सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर माहौल तो वहां है ही, नो डाउट माहौल है, प्रोफेसर हैं, पढ़ने की जो सामग्री मिल जाती है वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, और उसके कारण सच बात यह है कि लोगों का जोश भी इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो मित्रों, सवाल फिर ये उठता है, क्या सबको दिल्ली जाना चाहिए? क्या दिल्ली का कोई विकल्प नहीं है? अगर बनना है तो दिल्ली जाना है। देख, ये सच्चाई का बिल्कुल एक चेहरा होगा, नॉट एट ऑल। आप मुझे बताइए कि जो सेकेंड टॉपर है इस साल की, वो कहां की है? साउथ की है, उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप इस रूप में मत लीजिए कि दिल्ली जाने से ही आप बन जाएंगे। अगर आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, दिल्ली जाने के बाद दिल्ली की जो ताकत है, दिल्ली की उस ताकत को आपने अपनी ताकत नहीं बनाया, तो केवल दिल्ली जाने से आप आईएएस नहीं बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट नहीं बन जाएंगे। और अगर दिल्ली की जो ताकत है उसको समझ कर आपने अपनी कहीं भी रहते हुए अपनी ताकत बना लिया, तो आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। तो मित्रों, पहली बात ये कि स्थान को कभी भी आप अपनी कमजोरी न बनने दें, लेकिन ये जरूर है कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो कुछ बहुत बेसिक चीजें चाहिए, वो बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास न्यूज़पेपर्स आना चाहिए, आपके पास मैगजीन्स आनी चाहिए, ये सारी चीजें पहुंचनी ही चाहिए। और अब तो कम्युनिकेशन ने, सच पूछिए तो छोटे छोटे स्थानों को भी दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया है। बस जरूरत केवल इस बात की है कि आप उसको कैसे सही तरीके से अपनी ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। मित्रों, इस बीच में कुछ लोगों ने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे हैं और मेरे पास ईमेल भी आए हैं कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स सफलता वाले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि सबके सब साइंस बैकग्राउंड से हैं और उसमें इंजीनियर और डॉक्टर ज्यादा हैं। सभी लगभग अभी तक मेरी जो जानकारी में आई है, इंजीनियर्स और डॉक्टर ही हैं। मैं यहां एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ تاکہ جو دوسرے برانچ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو کامرس کے اور ہیومینٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیمورلائز نہ ہوں، اس کی سچائی کیا ہے؟ میں آپ کو اتپریرت نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی بتا رہا ہوں. فرینڈس، اس سے پہلے جو پری کا ایگزام ہوتا تھا، نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو سی سیٹ کا ایگزام تھا، وہ انجینئرنگ، جو ایم بی اے ان اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ فیور میں تھا. نو ڈاؤٹ اس میں جو لاجیکل ہوتے تھے دوسرے ہوتے تھے، اور مطلب سمجھیے کہ 200 میں اگر 178.2 مارکس لانے والے اسٹوڈنٹس کا تو پرمان میرے پاس ہے. تو جو اسٹوڈنٹ اتنا اسکور کر لے گا ایک پیپر میں، تو دوسرے برانچ کے جو ہوں گے کامرس اور آرٹس والے، اس کو کور کر ہی نہیں پاتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کو لے کر کے ڈیمانڈ چلی، اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں میرا بھی تھوڑا بہت یوگدان رہا. میں نے دینک جاگرن میں اس کے خلاف، مطلب اس کے بارے میں ایک بہت ہی جو ایک سچ میں جو ایک ریئلٹی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بہت سے آرٹیکلس لکھے، اور انتتہ سرکار نے اس کو سمجھا، اور سمجھتے ہوئے یو پی ایس سی نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک تو انگلش کے کوشچنس کو باہر کر دیا، اور بعد میں اب آ کر کے اسی سیٹ کے پیپر کو کوالیفائنگ پیپر بنا دیا. تو متروں، اس سے پہلے کے جو ریزلٹس تھے، تو پری اسٹیج ہی وہ ہوتی تھی جو انجینئرنگ اور سائنس کے اسٹوڈنٹ، سائنس کے اگر سائنس میں اگر ہم کہیں تو میتھس اور لاجک ان کے فیور میں ہوتا ہے، بھلے ہوئے ایم بی بی ایس والوں کے لیے اتنا فیوریبل نہ ہو. ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی انجینئرنگ کی تلنا میں کم آتے تھے، لیکن مینجمنٹ کے بہت آتے تھے اور آپ کے انجینئرنگ کے بہت آتے تھے. تو وہ پری میں ہی چونکہ آ جاتے تھے، تو اب انہیں کو ہی آنا ہے، مینس میں انہیں کو آنا ہے، پھر انٹرویو میں انہیں کو آنا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سال ابھی جو اگست میں ایگزام ہونے جا رہا ہے، جس میں اس کو کوالیفائنگ پیپر کر دیا گیا سی سیٹ کو، تو اگلے سال جو ریزلٹ آئیں گے اس میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ سینیریو ملے گا. اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ دوسرے برانچ کے ہیں، اپنا من بالکل بھی چھوٹا نہ کریں، اپنی تیاری پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں، کیونکہ یدی دھراتل بدل جاتا ہے تو چیزیں اپنے آپ بدل جاتی ہیں. اب جو بیس ہے، چونکہ وہ بیس بدل چکا ہے، سرفیس بدل چکا ہے، تو بٹ نیچرل ہے کہ ریزلٹ بھی اپنے آپ بدلیں گے. زمین بدلنے کے بعد اس پر اگنے والی فصل بھی اپنے آپ بدل چکی ہوتی ہے. تو فرینڈس، دوسری بات میں اس پر آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، انجینئرنگ، سائنس، آرٹس، کامرس کے برانچز کو لے کر کے، کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. متروں، ایک دوسری سچائی اور بھی ہے، تھوڑا سا آپ اسے بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ شروع سے سائنس پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 11th 12th سے سائنس پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر گریجویشن سائنس سے کر رہے ہیں. تو وہ سائنس کو پڑھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے. سائنس کو آپ اس طرح سے رٹ نہیں سکتے، یاد نہیں کر سکتے، ہے نا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. پھر سائنس کے اسٹوڈنٹ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں لیب میں جا کر کے، تو ان کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے نا، وہ کافی سائنٹیفک ہو جاتا ہے. میں جیون کے سندربھوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں سبجیکٹ کے سندربھ میں کہہ رہا ہوں. تو چونکہ ان کی اپروچ سائنٹیفک ہو جاتی ہے سبجیکٹ کو پڑھنے کی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چاہے وہ اپنے سبجیکٹ کو آپشنل میں لے کر کے پڑھیں، یا پھر اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر کے وہ آرٹس کے آپشنل لے لیں، یا پھر چاروں کے چاروں جنرل اسٹڈیز کا پیپر کیوں نہ ہو، تو ان کی جو سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، وہ سائنٹیفک اپروچ انہیں تھوڑی سی مائلیج دلا دیتی ہے. یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایرا سنگل کا ہی دیکھ لی، وہ جاگرافی لے کر کے آپشنل چل رہی ہیں. سیکنڈ جو ٹاپر رہی ہیں وہ ملیالم لٹریچر لے کر کے چل رہی ہیں، جو وہ ڈاکٹر رہی ہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ ان میں پڑھنے کا ایک ان کو طریقہ پتہ لگ گیا ہے، ایک سائنٹیفک ان کی اپروچ بن گئی ہے. اور متروں، یہی سائنٹیفک اپروچ آپ چاہے کسی بھی برانچ سے ہوں، آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور میں پھر سے، مجھے اس بات کی خوشی ہے، ریزلٹس آنے دھیرے دھیرے شروع ہو گئے ہیں، کہ یہ ڈیلی آڈیو گائیڈنس اور 15 دن کی کلاسز کیول یہی ایک سائنٹیفک اپروچ آپ کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو متروں، سائنس کے اسٹوڈنٹ جو تھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ بھی کارن ہوتا ہے. آپ یہ بالکل مت مان کر کے جائیے گا کہ یو پی ایس سی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ وہ چھانٹ چھانٹ کر کے سائنس کے اسٹوڈنٹ کو سفل بناتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ جو پورا کا پورا ایگزامینیشن کا پیٹرن ہے یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ کے فیور میں ہے. ایسا کم سے کم میں تو نہیں ہی مانتا. فرینڈس، آج کافی لمبی بات آپ لوگوں سے انوپچارک بات چیت ہوئی ہے، اور چونکہ سمے ایسا، اوسر یہ ایسا ہے، اس لیے میں انوپچارک بات چیت زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرے پاس کچھ میل بھی آئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ نہیں، اسی کو ہی کنٹینیو، اسی پیٹرن کو کنٹینیو کرنا زیادہ بہتر رہے گا. لیکن کب تک؟ دو چار پانچ دن اور، دو چار دن اور، اس کے بعد تو پھر ہم اپنے پرانے پیٹرن پر آئیں گے، کیونکہ وہ تو پیرینیل ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. ही है, लेकिन फिर भी हम न्यूज के कंटेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो कल के AIR न्यूज का स्टेज है। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि जो पूरे के पूरे न्यूज में, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीज थी, कौन सी बात थी जो आपको उसमें से पकड़नी चाहिए। आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप ज्यादा नहीं, अगर आप एक महीने से भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो आप बड़े आराम से फट से आपके दिमाग में आ जाएगा कि पूरी 15 मिनट 14 मिनट की जो आपने न्यूज सुनी है, उसमें सिविल सर्विस के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कौन सी थी। आप सोचिए, आप देखेंगे कि उत्तर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और वो होगा कि प्राइम मिनिस्टर की मध्य एशिया की यात्रा एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा होने लगा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, और आप सही तरीके से न्यूज सुन भी रहे हैं, और सही तरीके से इस ऑडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इस ऑडियो को रटने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि रटने वाली कोई चीज होती ही नहीं। मैं तो केवल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, राइट? तो जब आपके दिमाग में यह समझ में आ गया, आपके दिमाग ने आपको यह प्रोवाइड कर दिया कि नहीं, कल जितनी भी तुमने न्यूज सुनी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर की मध्य एशिया की यात्रा, तो फिर अब आप फिर से सोचने की कोशिश कीजिए, और आपको ऐसी तैयारी करनी भी चाहिए, इसी पैटर्न पर करनी चाहिए कि फिर यह मध्य एशिया की यात्रा के बारे में मैं अब तक क्या क्या जानता हूं। देखिए, आपको एक्सपर्ट नहीं होना है। मैं कुछ चीजें आपको आगे चल करके और बड़ी अद्भुत सी बताऊंगा, और उनको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं, कुछ रिसर्च कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आप मध्य एशिया के बारे में आप सोचिए कि अभी तक आपने अखबारों में क्या पढ़ा है, न्यूज में क्या सुना है, आपने चैनल्स पर अगर डिस्कशन सुने होंगे तो उसमें क्या सुना है, ऑडियो अगर आप सुन रहे होंगे तो ऑडियो में क्या बताया गया है, एडिटोरियल क्या लिखा गया, इन सबको याद करने की कोशिश कीजिए। और याद करते समय मित्रों, उसमें से कचरा वाले पोर्शन को हटाइए, जो फालतू की चीजें हैं ना उनको हटाइए, इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मध्य एशिया जो देश है वो प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। कहीं प्राकृतिक गैस बहुत ज्यादा, हाइड्रोकार्बन, तो कहीं यूरेनियम बहुत ज्यादा है, जैसे कजाकिस्तान में कल सिग्नेचर हुए हैं और भारत को यूरेनियम देने का उन्होंने वायदा किया है। सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में है, यह भी आपको एक जनरल नॉलेज का पता लग गया। तो भारत को तेल की जरूरत है, और मध्य एशिया में तेल बहुत ज्यादा है, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपके तुरंत दिमाग में आएगी कि नहीं, सिक्योरिटी रीजन तो बहुत है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मध्य एशिया से उसी तरीके से बात हो रही है। फिर आप देख रहे हैं, एक आपको एक स्ट्रेटेजिकल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होती है, जिसको हम राजनयिक नीति कहते हैं। उसके अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं कि चीन भी यहां पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑडियो को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो पिछले साल ही होकर के आ गए, चीन भी वहां घुसने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रूस के ही ये देश थे, 1991 में अलग हुए, और रूस को अब एक तरीके से कह लीजिए कि यूरोपीय संघ ने, आपने देखा है ना यूक्रेन के मामले में, यूरोपीय संघ ने उस पर बैन लगा दिया, अमेरिका ने भी बैन लगा दिया, पता नहीं, तो अब रूस को भी लग रहा है कि उसको भी साथी चाहिए, तो वो भी अपने इन पुरानों की तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि वो भी यहां पर मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करे। और ये जो मध्य एशियाई देश हैं, ये चीन को भी जानते हैं, रूस को भी जानते हैं, तो इनको एक नए साथी की तलाश है। तो ये नया साथी और कौन हो सकता है भैया? साथी आपको अगर चाहिए तो थोड़ा मजबूत साथी तो चाहेंगे, एक तो थोड़ा सा मजबूत हो जो आपकी मदद कर सके, और दूसरा जिस पर आप विश्वास कर सके। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत राइट टाइम है, जिसको कहते हैं कि लोहा गर्म है और इस पर चोट की जाए, कि भारत के लिए बहुत राइट टाइम है कि वो मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर ले, बेहतर बना ले, भारत की शक्ति बढ़ जाएगी, भारत को संसाधन मिलने लगेंगे, प्राकृतिक संसाधन मिलने लगेंगे, भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाइपलाइन की जो समस्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए वो भी सुलझ जाएगी। तो बस ये मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में आ गई बस, और इसी को आप देखें कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा चलती रहेगी तब तक आप सुनते रहेंगे, तो कितनी बार आपके दिमाग में वो चीज रिपीट हो जाएगी, और जब रिपीट हो जाएगी तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, सपोर्टेड बाई आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल कमेंट्स। फिर आप आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, फिर आप एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद फिर आपके पास मैगजीन आ जाएगी, उस मैगजीन में भी इसके बाद इसके बारे में मिल जाएगा। हो गया, बिना तैयारी किए आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, और इस तरीके से तैयार हो गया क्योंकि परत दर परत आपके दिमाग ने उन चीजों को देखा है, आप घटनाओं को अपने सामने होता हुआ एक तरीके से कह लीजिए देख रहे हैं, तो दिमाग में भी वो चीज आपके बहुत गहराई में रिश्ते चली जा रही है। और फिर जब सिविल सर्विस में क्वेश्चन आएगा, फिर आप देखिए कि वो क्वेश्चन आपको कितना आसान लग रहा है, कितना मजेदार लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि कितना प्यारा लग रहा है। और बस मित्रों, यही सिविल सर्विस की सफलता का सबसे बड़ा राज है। फ्रेंड्स, पहाड़ ऊंचे नहीं होते, कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत बौना समझ लेते हैं। नहीं तो पहाड़ को तो पार करने वाले लोग भी हैं, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उस पहाड़ को रोजाना पार कर रहे हैं, उनके लिए पहाड़ राजमार्ग की तरह है और हमारे लिए पहाड़ पहाड़ की तरह है। तो सवाल केवल यह है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का। उन्होंने कैपेसिटी अपनी बिल्डिंग कर ली है कि वो पहाड़ को इस तरह से पार करते हैं मानो कि वो हाईवे को पार कर रहे हैं। और जिस दिन आप इस रहस्य को समझ लेंगे, रहस्य नहीं है ये, साइंस ही है, इस साइंस को समझ लेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से सिविल सर्विस आपको बहुत प्यारा लगने लगेगा। मित्रों, दूसरी खबर थी चीन के शेयर बाजार के ऊपर। आप लोग आपको मैं आज दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अभी ये शुरुआत हुई है, ये क्या रूप लेगी, तब हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। और अभी अपने पास वक्त भी इतना नहीं है कि हम इसको लेकर के बात करें। दोस्तों, न्यूज में आज कुछ खास नहीं था। अब आता हूं मैं न्यूज पेपर्स पर, तो न्यूज पेपर्स के बारे में भी मैं कोई खास आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं। नॉलेज सेंटर पर क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, आप इन्हें देख लेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा नरेंद्र प्रसाद निराला का, जो अभी अक्टूबर का जो बैच लगने वाला है उसमें नरेंद्र आ रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में अभी रह रहे हैं और दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। तो इन्होंने लिखा है कि इनका मोबाइल नंबर बता दिया जाए और जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, उधर से आने वाला स्टूडेंट इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो नरेंद्र प्रसाद निराला का मोबाइल नंबर है 7070702001, ये उनका मोबाइल नंबर है। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं सभी अपने मेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं दोस्तों में से कुछ के नाम हैं मोनिका चौहान, प्रेरणा सात्विका, सान्याम जैन फरीदाबाद से हैं, संजीव जम्मू से हैं, देवलीना विश्वास, असफाक हरिओम भार्गव लखनऊ से हैं, अजय चौहान पानीपत से हैं और नीतीश कुमार बेगूसराय से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इस अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाजत लेना चाहूँगा। नमस्कार।